राजवीर चुपचाप उसकी बात सुनती रही, क्योंकि वो जानती थी वंशिका के बचपन में क्या तूफान आया था। अब आगे फिलहाल आस्था ने वंशिका का परेशान चेहरा देखकर जल्दी से उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने वंशिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वासन देते हुए बोली, शांत हो जाओ वंशिका, जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये सुनकर वंशिका ने केवल हल्का सा सर हिलाया और आस्था का हाथ थामकर बोली, चलो चलो अंदर चलते हैं। ये बोलकर दोनों ने जल्दी ही दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। तब आस्था यहाँ वहाँ देखकर जल्दी से वंशिका को बोली, तुम बेझिझक इस तरह से किसी के घर में जा रही हो, क्या इस तरह से जाना ठीक रहेगा? तब वंशिका उसे आश्वासन देते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, बस तुम चलो मेरे साथ। अब जल्दी ही उन लोगों ने प्रोफेसर प्रशांत जी के घर में अपना कदम रखा और वहां जाकर उन्होंने इधर उधर देखा। चारों तरफ किताबें, रिसर्च पेपर और नोट्स बिखरे पड़े थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर कई फाइलें खुली थीं। एक कोने में अधूरी थीसिस रखी थी और दूसरे कोने में व्हाइट बोर्ड था जिस पर जटिल समीकरण और ढेर सारे आइडियाज लिखे हुए थे। बीच में प्रोफेसर प्रशांत बैठे थे, सफ़ेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखों पर चश्मा। उनकी नज़रें इतनी तेज थीं कि कोई भी उनसे मिलते ही समझ जाता, ये इंसान साधारण नहीं है। प्रशांत जी को देखने के बाद वंशिका कुछ पल चुप खड़ी रही, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वंशिका? प्रशांत जी वंशिका के आने की आहट महसूस कर चुके थे और तुरंत उठ खड़े हुए। प्रशांत मुस्कुराते हुए, आओ वंशिका, कितने सालों बाद तुम्हें सामने देख रहा हूँ। ये सुनकर वंशिका की आंखें तुरंत झुक गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रोफेसर मुझे पता है, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मेरी शादी में मैं आपको बुला भी नहीं पाई। इतना कहकर वंशिका चुप हो गई और प्रोफेसर प्रशांत को एकटक देखने लगी। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई, आस्था चुपचाप खड़ी रही। प्रोफेसर प्रशांत गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा रिश्ते कभी निमंत्रण पत्रों से नहीं बनते, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी अपनी बेटी जैसी रही हो। हाँ दुख तो हुआ था, लेकिन जिंदगी हालात से फैसले करवाती है, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। उनके शब्द सुनते ही वंशिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी और धीरे से उनके पैरों के पास बैठ गई। वंशिका रोते हुए, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, आपने ही मुझे बचपन से संभाला और आज भी मेरी सबसे बड़ी ताकत आप ही हैं। प्रशांत ने उसके सिर पर हाथ रखा, कोमल स्वभाव से बोले, बस इतना याद रखना, मैं हमेशा यहीं हूं, तुम्हें मेरे पास आने के लिए कभी किसी इजाजत की जरूरत नहीं। आस्था ये सब गौर से देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वंशिका की जिंदगी में प्रोफेसर प्रशांत केवल एक गुरु नहीं बल्कि पिता का स्थान भी रखते हैं। तभी अचानक वंशिका की नज़र आस्था पर गई और वो आस्था को आगे लाकर प्रोफेसर से मिलाते हुए बोली, बाबा। वंशिका प्रोफेसर साहब को बाबा पुकारती थी। वंशिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, ये मेरी दोस्त है आस्था। आस्था ने सर झुकाकर प्रोफेसर को नमन किया। प्रोफेसर प्रशांत ने भी प्यार से आस्था के सिर पर हाथ रखा और उससे बोले, आओ बेटी बैठो। ये बोलकर उन्होंने वंशिका और आस्था को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया था। वहीं दूसरी ओर सम्राट अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि आज उसे 7 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक ना तो आस्था के बारे में कुछ पता चला था और ना ही वो इंडिया जा पाया था, और वहां जाकर ही आस्था के बारे में पता लगाया जा सकता था। लेकिन अब तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अभी तक राजवीर ने उसे कोई इशारा भी नहीं दिया था कि उसे इंडिया कब जाना है। कहीं ना कहीं राजवीर अगर उसे इंडिया भेजना चाहता था तो वो पूरी तैयारी के साथ भेजना चाहता था, ताकि अरमान को चारों तरफ से घेर कर अटैक किया जा सके, क्योंकि अरमान अब पुराना अरमान है, इस तरह से वो किसी की बातों में आने वाला नहीं और उसे अब आसानी से बेवकूफ भी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि अब अरमान के पास उसके प्यार की ताकत नहीं है, तो अरमान अब दिल से नहीं दिमाग से सोचता है, इसीलिए उसे आसानी से बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन हाँ उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करके उसे बर्बाद जरूर किया जा सकता है। फिलहाल राजवीर तो अपनी नई नवेली बीवी, जिसे उसने खुद क्रिएट किया था, के पास से हटने की तैयारी नहीं था। सारा दिन वो उसके साथ या तो रासलीला करता रहता था और बाथरूम में भी उसे एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ता था। वो पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। वहीं रॉकी, जो राजवीर को देख रहा था, ये नोटिस कर रहा था कि राजवीर अपनी बीवी के लिए खुद नाश्ता, लंच और डिनर अपने हाथों से बनाता था और अपने हाथों से ही उसे खिलाता भी था। जहां भी देखो वहीं उससे प्यार जताना शुरू कर देता था। उसके बिहेवियर में एकदम जंगलीपन साफ दिखाई देता था। रॉकी पूरी तरह से कंफ्यूज था और सोच रहा था, आखिरकार बॉस को इस बुढ़े में क्या नजर आता है, और ये बुढ़ा देखो किस तरह से एक जवान लड़की के साथ रसलीला कर रहा है, और ये जवान लड़की भी इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। आखिर कहानी क्या है इसकी? कहीं ना कहीं रॉकी काफी कंफ्यूज था, लेकिन उसके पास सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं था। फिलहाल जल्दी ही रॉकी सम्राट के ठीक सामने मौजूद था और वो उसकी ओर देखकर एकदम से बोला, बॉस हम इंडिया क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अब तो मैंने उस लड़की का पता भी निकलवा लिया है कि वो प्राइवेट जेट से जाने वाली थी, क्योंकि जो प्राइवेट जेट पायलट लेकर गया है उसका एक साथी हमारे हाथ लग गया था, जिससे हमें सारी जानकारी मिल चुकी है। अब तो हमारे पास उस लड़की की पूरी डिटेल्स है, तो फिर हम इंडिया क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बॉस मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहिए और बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनकर सम्राट बेपरवाह अंदाज में बोला, अभी तक गुरुजी ने हमें इंडिया जाने की इजाजत नहीं दी है, और जब तक वो हमें इजाजत नहीं देंगे तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर रॉकी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और वो थोड़ा इरिटेटिंग अंदाज में बोला, बॉस आप ये क्या कह रहे हैं? आप ब्लैक डेविल हैं और ब्लैक डेविल को किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। बॉस आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब ये सुनकर सम्राट गार्डन में टहलते टहलते एकदम से रुका और खा जाने वाली नजरों से रॉकी को देखते हुए खतरनाक अंदाज में बोला, आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है रॉकी, क्या तुम भूल गए अभी कुछ दिनों पहले हमने तुम्हें क्या सजा दी थी? और अभी तक तुम उस विवेक सिंघानिया का भी पता नहीं लगा पाए हो, और हमारे सामने खड़े होकर तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो, हाँ? अब रॉकी जल्दी से अपनी गलती की माफी मांगते हुए हड़बड़ाकर बोला, माफ कर दीजिएगा बॉस, लेकिन आप जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चक्कर में बैठकर इतना इंतजार कर रहे हो, उसकी इतनी बातें सुन रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको मैंने आज तक सबको ऑर्डर देते हुए देखा है, किसी से ऑर्डर लेते हुए नहीं, और आपको उस व्यक्ति की बातों पर इतना ज्यादा यकीन क्यों है? अब जैसे ही रॉकी ने राजवीर के लिए अपनी नफरत जाहिर की, वैसे ही अचानक सम्राट ने आगे बढ़कर उसका गला जोरों से पकड़ लिया और रॉकी पर अपनी भड़ास निकालते हुए बोला, खबरदार जो तुमने मेरे गुरुजी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा तो, वो मेरे गुरु हैं, ये जीवन दिया है उन्होंने हमें, ये जो मेरी पर्सनैलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से है, लेकिन उन्होंने मुझसे ज्यादा हमेशा उस अरमान से प्यार किया है, मुझसे ज्यादा उन्होंने हमेशा अरमान को तवज्जो दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा बुरे तरीके से, मुझसे ज्यादा खतरनाक तरीके से मर्डर सिर्फ अरमान कर सकता है,
क्योंकि उस अरमान ने केवल 8 साल की उम्र में एक छोटे बच्चे का बड़ा बेरहमी से कत्ल कर दिया था, और वो बच्चा वही था जो वंशिका का भाई था। उस कत्ल के बाद वो गुरुजी का फेवरेट बन चुका था, क्योंकि उसने वो कत्ल बिल्कुल उसी तरह से किया था जिस तरह से गुरुजी कत्ल करते थे, और उसके बाद जब मैंने कत्ल करने की कोशिश की तो मैं सही से कत्ल नहीं कर पाया। ये बात उस दिन से मुझे अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रही है, और उस दिन से लेकर आज तक न जाने मैंने कितनों की जान ली होगी, इतनी की गिनती तक याद नहीं रही मुझे, लेकिन अभी तक मैं अपने गुरुजी का फेवरेट नहीं बन पाया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अरमान को हराकर अपने गुरुजी के मुंह से ये सुनना कि मैं उससे ज्यादा कमीना हूँ, उससे ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ हर मामले में। बस केवल मुझे लड़की का ही तो ऑब्सेशन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मर्डर करने का ही ऑब्सेशन है। ये बोलते हुए अचानक सम्राट बुरी से हंसने लगा था। वहीं रॉकी अगले ही पल पूरी तरह से घबरा चुका था, और वो एकदम से हैरान होकर सोचने लगा, अगर मेरे बॉस को आज तक किसी लड़की का ऑब्सेशन नहीं हुआ तो फिर वो उस अनजान लड़की को इस तरह से पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा है? उसका क्या कारण हो सकता है? फिलहाल उसने सोचा कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे अपने बॉस से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए वो सीधा वहां से बाहर निकल चुका था। दूसरी ओर फिलहाल जल्दी प्रोफेसर ने गर्मजोशी के साथ आस्था का भी स्वागत किया था और उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहा था। उस वक्त आस्था की आंखों में हल्की सी नमी थी। जिस तरह से प्रोफेसर प्रशांत ने उसके सर पर हाथ रखा था उसे उनसे भी गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। फिलहाल अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उसने प्रोफेसर प्रशांत की ओर सवालिया नजरों से पूछा, सर हम यहाँ पर आपसे कुछ जरूरी बातें जानने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर प्रोफेसर प्रशांत एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने बैठ गए और उन्होंने धीमे स्वर में आस्था से पूछा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है? तभी आस्था ने वंशिका को कुछ इशारा किया। वंशिका ने जल्दी ही कुछ कागज अपने पर्स में से निकालकर प्रोफेसर के आगे रख दिए थे। उन कागजों में कुछ और नहीं बल्कि अरमान की सब मेडिकल डिटेल्स थी। प्रोफेसर प्रशांत जैसे जैसे कागजों को गौर से देख रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बिगड़ते जा रहे थे। तब वंशिका उनके हाव भाव नोटिस करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि पिछले आधे घंटे से लगातार प्रोफेसर प्रशांत उन कागजों को गौर से देख रहे थे और काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। अब वंशिका थोड़ा थोड़ा डर भी महसूस कर रही थी। आस्था के हाथों की बेचैनी भी उसने साफ महसूस कर ली थी, इसीलिए वो आस्था को पलके झपकाकर इशारे करती है कि वो बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तभी ठीक 40 मिनट के बाद लगातार पेपर देखने के बाद प्रोफेसर प्रशांत ने गहरी सांस ली
और उन्होंने वंशिका और आस्था को बारी बारी से देखा। फिर अपनी सीट से उठ खड़े हुए और शांत स्वर में वंशिका से अरमान का ब्लड मांगते हैं, तो वो ब्लड भी अब वंशिका ने प्रोफेसर प्रशांत के हाथों में दे दिया। तब प्रोफेसर प्रशांत बेहद आहिस्ता से बोले, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। अब ये सुनकर एक पल के लिए वो दोनों चौंक गईं, फिर धीरे से हामी भरते वो दोनों प्रशांत जी के पीछे पीछे जाने लगीं। प्रशांत जी जल्दी ही अपने बेडरूम में आ गए। वहां जाकर आस्था को काफी नॉर्मल लगा, क्योंकि साधारण सा बेड बीच में पड़ा हुआ था, साथ ही कुछ बुक्स रखी हुई थी, एक छोटा सा लैंप था और पास में कपड़ों की अलमारी खड़ी हुई थी। फिलहाल आस्था हैरानी से सोचने लगी कि प्रोफेसर साहब उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, और अचानक आस्था के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। अगले ही पल वंशिका ने आस्था के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, भरोसा रखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम का यहाँ कोई ना कोई सलूशन हमें जरूर मिलेगा। अब ये सुनकर आस्था ने भी अपनी पलकें झपकाईं। फिर प्रोफेसर साहब अपनी अलमारी के पास गए। अपनी अलमारी को उन्होंने एक ही झटके से अलग कर दिया और देखते देखते अलमारी के ठीक पीछे से एक रास्ता नजर आने लगा। अब इस सीक्रेट रास्ते को देखकर आस्था और वंशिका दोनों ही चौंक गई थी, क्योंकि वंशिका को भी आज तक उस जगह के बारे में पता नहीं था। भले ही वो प्रोफेसर साहब के कितनी ही क्लोज क्यों न रही हो, लेकिन इस तरह से उनके इस राज के बारे में उसे नहीं पता था। फिलहाल बिना कोई सवाल किए दोनों साथ साथ प्रोफेसर के पीछे चलने लगी और जल्दी ही वे एक ऐसी लैब में पहुंच चुकी थीं जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स रखे हुए थे। हर तरफ से छोटे छोटे सफेद रंग का धुआं निकल रहा था। इतना ही नहीं, वहां पर कुछ मानव कंकाल भी रखे हुए थे। ये सब देखकर आस्था पूरी तरह से डर गई थी। वहीं वंशिका भी डरते डरते थोड़ा सा घबराते हुए बोली, बाबा ये सब क्या है।